وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ये आयत इतनी प्यारी है ना, इतनी खूबसूरत आयत है ये। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको, जो के चाहे वो यतीम के जो वो रसा थे, जो औलिया थे उसके, या कोई भी पीछे से जो विरासत बांटने वाले हैं, कोई भी पीछे जो रह जाने वाले हैं, उनको कहा जा रहा है कि डरो। डरे वो लोग, कौन लोग? मैंने बताया ना कि जो या तो उनके औलिया हैं या और लोग जो पीछे रह गए हैं, उनके कफील हैं, उनके विरासत के माल को तकसीम करने वाले हैं, वो डरे किस बात से? लव तरकु मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दियाफन खाफू अलैहिम। सुबहान अल्लाह, वो ये डरे कि अगर वो छोड़ जाएं अपने पीछे ऐसे बच्चे, जैसे अब ये बंदा छोड़ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पेड ऑफ नहीं है, वो बेचारे किधर जाएंगे, अब किधर रहेंगे, क्या करेंगे? तो उस वक्त जब तुम उसकी मैयत पे खड़े हुए हो ना, तो तब तुम सोचो, डरो इस बात से, लव तरकु, अगर वो छोड़ जाए, अगर तुम खुद छोड़ जाओ अपने पीछे इस तरह की कमजोर औलाद, तो तुम उसकी कितनी फिक्र करोगे? खाफू अलैहिम, तो वो डरते रहेंगे उनके बारे में कि हाय हमारे बच्चों को हमारे पीछे से क्या होगा। तो तुम अपने आप को रख के यानी सोच लो कि ये बंदा नहीं दुनिया से गया, अगर मैं दुनिया से इसकी जगह मैं चला गया होता, तो मेरे बच्चों का क्या बनता, मैं उनकी कितनी फिक्र कर रहा होता। खुद के ऊपर तारी करो इस चीज को। आज अगर ये यतीम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ना, तो और ये पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें कि वो यतीम भी आए हुए, मिस्कीन भी आए हुए, उनका कोई हिस्सा नहीं बनता है। ये वो वाले रिश्तेदार हैं जिनका विरासत में हिस्सा नहीं है, मसलन है कोई भांजा है, कोई भतीजा है इनके, अब नहीं है, या कोई चचा वगैरह भी है, अगर उसका नहीं हिस्सा बन रहा इस वक्त इसमें, हर जगह पे चचा का हिस्सा नहीं बनता, चचा है, कोई मामू है, कोई खाला आ गई है, कोई बेचारे, कोई मिस्कीन भी है, या मिस्कीन नहीं भी है, सिर्फ रिश्तेदार है, बस वो देख रहे हैं इस वक्त के चलो हमें भी कुछ मिल जाए। तो आपने अगर उस यतीम को दे दिया, तो उसको झिड़को ना, चाहिए कि डरे, डरे इस बात से कि कल को वो भी अपनी औलाद ऐसे छोड़ के जा सकते हैं, तो फिर क्या होगा। तो जब यतीम को देखो, इंसान को ये सोचना चाहिए, सोसाइटी के सारे ही लोगों के लिए ये बात है, पैगाम। जब ऐसे महरूम बच्चों को देखो जिनके सर से बाप का साया उठ गया हो, तो अपने आप को रख लिया करो कि मेरे भी बच्चे हैं, अगर मैं कल को चली जाऊं तो फिर मैं कितनी डरूंगी अपने बच्चों के बारे में, इनका क्या बनेगा, ये सोच के उनके साथ मामला करना। अल्लाह अकबर, फल यत्तकुल्लाह, कितना जबरदस्त अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, किस तरह इंसान को खड़ा करके वहां पे दिखा दिया, इंसान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, फिर पसीने आने लगते हैं कि हाय वाकई अगर मेरे बच्चे इस जगह हो तो क्या हो। अपने बच्चों को वहां पे खड़ा करो, अपने बच्चों को इनकी जगह पे देखो, और खौफे खुदा करो इनके बारे में, फल यत्तकुल्लाह, क्योंकि इंसान का डर नहीं आता जब तक इस तरह से नहीं इस चीजों को सोचता। وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, پھر بات کرو وہ جو سٹریٹ ہو, ایسی بات کرو جس میں کوئی ایسی پیچ و تاب, کچھ ایسی کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ کچھ ڈفرینٹ ہی مانا اس کا نکلا, کوئی ایسی بات جو کو ڈبل مانے رکھتی ہو, کیا اس کو کچھ دیا, اس بیچارے کو ہرٹ ہو گیا, اس نے کچھ اور سمجھ لیا, نہیں, سٹریٹ بات کرو, سیدھی بات. دیکھ لیں اب یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ انصاف پر قائم رکھے. اور یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ دیکھیں رشتہ داروں کا بھی کتنا حق ہے, یتیموں کا کتنا حق ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے نبی, یتیم کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے کیا بتا دیا. مسکین, مسکین کے ساتھ بھی وہ مسکین ہے, وہ چاہے نہیں اس کا حق بھی نہیں بنتا, پھر بھی اس کو دے دو. مسکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین, اے اللہ مجھے دے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کی توفیق, اور ترک المنکرات جو گناہ ہے نا ان کو چھوڑنا کی توفیق, اور حب المساکین, اللہ مسکینوں سے ہمدردی محبت رکھنا, اس کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ, اور رشتہ داروں کے کو دے دیں گے اگر, उसके माल में से मरने वाले के, तो उसकी तरफ से भी एक सदका हो गया, चलो उसकी आखरत भी कुछ समझ जाएगी। और यतीम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कोई शायद इससे डरना ही ना शुरू हो जाए कि हाँ ये फिर तो बाबा हम नहीं यतीम को घर पे लाते, हमसे कहीं ज्यादती ना हो जाए, हमसे कहीं ये ना हो जाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यतीम की किफालत करने वाला ना, कयामत के दिन मैं और वो ऐसे होंगे, अपनी दो उंगलियां मिला के दिखाई, मिला के दिखाई अपनी दो उंगलियां कि देखो ऐसे मैं और वो होंगे। यतीम की जो किफालत करता है, कितनी बड़ी ये नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है, अल्लाह अकबर। और फिर वो जो यतीम का माल खा ले, लेकिन फिर गुनाह भी देखें, इन अल्लदीन यकुलून अमवाल यतामा जुल्मन इन्नमा यकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो जो यतीम का माल खा जाते हैं जुल्म के साथ। एक तो वो होता है ना कि अगर वो फकीर था तो उतना उसको लेने की इजाजत है कि वो अपनी तनख्वाह के तौर पे ले सकता है, वो तो हमने बात कर ली ना। लेकिन जो जुल्म ना हक कर रहा है, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, आग। और मैंने आपको यह हदीस सुनाई है ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे क्या देखा था, इस तरह ही कि उनके पेटों में पत्थर डाले जाते हैं। नहीं, दुनिया के अंदर तो वो पैसे नजर आ रहे हैं, वो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन वो अपने पेट में आग डाल रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन ऐसे लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, इनके मुंहों से आग के शोले भड़क रहे होंगे, आग उनके मुंहों से निकल रही होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह वो कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसे होगा? आपने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं? अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीम का माल जुल्मन खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वो आग उस दिन जाहिरन शक्ल में आ जाएगी, आज नजर नहीं आ रही ना, वो उस दिन जाहिर ही हो जाएगी। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने सुदी से रिवायत किया है कि जो शख्स यतीम का माल जुल्मन खाता है, जब वो कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके मुंह, उसके कानों, उसके नाक और उसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे, और हर शख्स देख के पहचान लेगा ये यतीम का माल खाने वाला है। देखें हम, और इसी तरह आप जिस बंदे के इतनी जगहों से आग निकल रही है, उसका हाल क्या होगा सोचें। वो अपने पेटों में आग डाल रहे हैं, फस वस यस लऊ न साइर और करीब वो दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में। तुम ये ना सोचना कि आज दुनिया में तुम इनके माल खा जाओगे, किसने पूछना है, कौन इनका वाली वारिस है, कौन मुकदमे लड़ेगा इनके लिए, कौन क्या करेगा, छोड़ो हम कब्जे करके बैठ जाएं। तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे इस यतीम के साथ अल्लाह खड़ा हुआ है। अगर ये आयतें पहुंच जाए हमारे माशरों में, हमारे लोगों में, तो मुझे बताएं हमारे माशरों में कोई ऐसा हो सकता है जो कि फिर भी यतीम का माल खा ले? कोई ऐसा हो सकता है बताएं? इतनी सख्त आयतों को सुन के अल्लाह अकबर। इसी तरह इस आयत के शाने नजूल में आता है कि जंगे उहद के बाद सईद साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बच्चियों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और कहा कि अल्लाह के रसूल, ये साद की बेटियां हैं, इनके वालिद आपके साथ उहद में शरीक हुए थे, वो वहां शहीद हो गए, तो इनके चचा ने इनका सारा माल ले लिया। मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस जमाने में ऐसे होता था, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो इनसे माल के बगैर कौन शादी करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खुद फैसला करेगा। और ये आयत मीरास नाजिल हुई थी, फिर और फिर ये नाजिल हुआ कि जो ऐसा करेगा वो फिर अपने पेटों में आग भर रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किस तरह से जो बेटियां उनको उनका हिस्सा और बेवा को उसका हिस्सा दिया जाए, और बाकी फिर चचा का हिस्सा होगा, क्योंकि अगर एक आदमी की सिर्फ बेटियां होती हैं तो फिर उसके लिए ऐसे ही है। यूसीकुम अल्लाह फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। यानी इंसान तू क्या अपने औलाद का बड़ा समझता है कि मैं अपनी औलाद की जितनी हमदर्द हूं कोई और नहीं है हमदर्द, और मैं तो इतना इसको दूंगी और इतना इसको दूंगी। नहीं, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका हमदर्द है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद खुद उनके बारे में वसीयत फरमाई है। वसीयत मतलब क्या? ताकीदी हुक्म, ताकीदी हुक्म, समझ आई ना? अल्लाह ने ताकीद की है इस हुक्म को देते हुए। सिर्फ खाली अल्लाह का तो हर हुक्म ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो कह दे ताकीद के साथ ये हुक्म दे रहा है अल्लाह। और आगे आप देखेंगे विरासत के सारे अहकाम, आप ये भी देख लें कि हम कितना इसके मुताबिक विरासत को बांटते हैं। इससे पहले आपको एक हदीस बता दूं, बुखारी और मुस्लिम में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक्कास के पास उनकी बीमारी के जमाने में उनकी इयादत के लिए गए, तो हजरत साद ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास माल बहुत है और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो मेरे पीछे है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने माल की 2/3 अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं। यानी अब उनको पता है, उनको लग रहा था कि मैं अब मरने लगा हूं, तो अब मैं 2/3 सदका कर देता हूं। आपने फरमाया नहीं। उनने कहा फिर 1/3 आप की इजाजत दे दी। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन ये भी ज्यादा है, अगर तुम अपने वारिसों को पीछे मालदार छोड़ के जाओ, वो इससे बेहतर है कि तुम उन्हें फकीर छोड़ के चले जाओ कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरे। यानी जब इंसान मरने लगता है तो वो ये सोचता है अब मैं जल्दी जल्दी सारा सदका कर दूं, इधर दे दूं इधर दे दूं, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल आखिरी दमों पे हूं, किसी वक्त मेरी जान निकल जानी है, छोड़ो मेरे बच्चों को क्या मिले, मैं तो खुद यहाँ पे चैरिटी करो वहां करो। वो उस वक्त नहीं करो चैरिटी, वो पीछे से उनको ये छोड़ जाओ कि वो बाद में लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं, ये भी नेकी है। क्योंकि अगर वो मोहताज होंगे, वो लोगों से मांगते फिरेंगे, माँ बाप अमीर थे, वो सारा अस्पतालों में और इधर उधर चैरिटीज में डाल के चले गए, और बच्चे पीछे जो है वो मांगते फिरते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। और ये भी पता चल रहा है ना कि अल्लाह ताला कितने इस बारे में फर्म अहकाम दिए हैं। ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ बात एक करनी दी गई के अहकाम, पहले बताया अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, ये किसी और की बात नहीं है। अब तुम इसको काटोगे, इस इन हुक्मों को तोड़ोगे तो किसका किसकी वसीयत को तोड़ोगे? किसी इंसान की नहीं है, अल्लाह ताला की बात है। तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वालदेन को कहा जा रहा है ये बात, नहीं ऐसे नहीं करना। हजरत साद से कहा गया नहीं आप अपनी बेटी के लिए छोड़े इतना। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन। अब आप लोगों को हमने एक टेबल है, इसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया है, जब आप इस टेबल को इंशाल्लाह खोल लेंगे तो ये सारी बातें ना एक टेबल में डाल दी गई है, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसका प्रिंट लेके अपने नोट्स में भी आप साथ लगा लीजिए। अब ये आयत और आयत नंबर 12 और सूरह निसा की आखिरी आयत समझ लें कि इसमें सारी विरासत के अल्लाह ताला की, सुभान अल्लाह इतनी हिकमत है, सारी विरासत के कानून इसके अंदर आ गए। और आप हैरान होंगे जब आप विरासत को पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को कि कैसे समो दिया अल्लाह ने इतनी बड़े बड़े हिसाब किताब को सिर्फ 3 आयतों के अंदर। ये सिर्फ 3 आयतें हैं जिनके अंदर ये हिस्से बांट दिए गए। लिद्दकरी मिस्लु हद्दिल उन्थैनैन, लड़के के लिए बेटा है या बहन भाई के अंदर तकसीम हो रही है तो ऐसे होगा कि लड़की के को हाफ मिलेगा, लड़के को डबल मिलेगा, यानी लड़के के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा, लड़के के मानिंद हिस्सा 2 लड़कियों के, यानी 2 लड़कियों को जितना मिलना है उतना 1 लड़के को मिलेगा। ये समझ आ रही है बात? अगर मिसाल के तौर पे 4 रुपए हैं तो लड़की को एक लड़की को 1 रुपया, एक को 1 रुपया, और लड़के को इन दोनों के 2 लड़कियों का जितना हिस्सा है उतने, 2 लड़कियों को कितना मिला टोटल, टोटल बताएं 2 रुपए ना, तो ये 2 रुपए इस लड़के को मिलेंगे। ठीक है ना, बेटा और बेटी के। यानी जब आप मिसाल के तौर पे किसी की 3 बेटियां 2 बेटे हैं तो वो अब किस तरह से इसको तकसीम करेगा, यानी जो 2 लड़के हैं उनके हिस्से को डबल कर लिया जाए, 2 लड़कों का हिस्सा डबल किया जाए, तो क्या मतलब 2 एक के 2 दूसरे के, तो 4 हो गए, और 3 लड़कियां तो उनको एक एक हिस्सा मिलना है तो 7 हो गए, तो 7 हिस्से करेंगे, 7 हिस्सों में से 4 हिस्से दोनों बेटों के और एक एक हिस्सा लड़कियों का। इस तरह आप बाकी भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फक इन कुन्ना निसाअन, अब किसी की सिर्फ बेटी ही है, अब पहले आपको बता दिया बेटे और बेटियां अगर किसी के हैं तो कैसे हिस्से करने। अगर किसी इन कुन्ना निसान फौकसनतैनी, अगर किसी की सिर्फ बेटियां हैं और 2 से ज्यादा बेटियां, 3 बेटियां मसलन किसी की हैं, फलहुन्न सुलुसा मातरक, तो उन बेटियों को कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा। 2/3 आप उसमें से निकाल लेंगे, पूरी जायदाद, सिर्फ जायदाद नहीं, मैंने कहा कल्ला और कसूर, सारा जितना भी उसने विरासत छोड़ी है उसमें से 2/3 निकाल के और सारी बेटियों के दरमियान तकसीम हो जाएगा। हर बेटी को 2/3 नहीं, 2/3 टोटल निकालेंगे और इन सारी बेटियों में तकसीम कर देंगे। वह इन कैनत वाहिदतन फलहन्निस, और अगर सिर्फ इकलौती 1 बेटी, जैसे मैंने हजरत साद की अभी आपको मिसाल बताई है, कि इकलौती बेटी है, उसके अलावा कोई औलाद नहीं है, तो उस बेटी को आधी जायदाद मिलेगी। ये नहीं होगी कि पूरी की पूरी मिल जाएगी, आधी मिलेगी। उसका कोई बहन भाई नहीं था। अच्छा अब देखें, वली अब वही ही, अब माँ बाप को भी हिस्सा मिलना है। वली अब वही ही और वालिदैन, लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा सुदुस, उनमें से हर एक को 1/6 हिस्सा मिलेगा। 1/6 हिस्सा मिलेगा हर एक को, यानी माँ को भी 1/6, बाप को भी 1/6। ऑन विच कंडीशन, किस कंडीशन में, मिम्मा तरका, उसमें से जो छोड़ गया मरने वाला, किस कंडीशन में, इन, इन से कंडीशन शुरू हो रही है, इन काना लहू वलद, अगर उस मरने वाले की औलाद थी, औलाद भी थी और वालदेन भी हैं, ठीक है। अब वो दुनिया से चला गया, वालदेन अभी जिंदा है, तो औलाद का नहीं, यहाँ पे वालदेन का भी हिस्सा बताया जा रहा है। तो वालदेन जिंदा है तो माँ को भी 1/6 मिलेगा, बाप को भी। अब यहाँ पे तो पूछा ही नहीं जाता ना, अगर वालदेन जिंदा भी है तो वालदेन वो किसने देना, बस सारा का सारा वो बच्चों को दे दिया जाता है। हालांकि उनके उस मरने वाले के वालदेन अगर जिंदा है तो उनका हक क्या है, वो उनको मिलना है, ठीक। फइल्लम यकुल लहु वलद, लेकिन अगर मरने वाला बेऔलाद था या नौजवान था, अभी उसकी शादी नहीं हुई, वारिसहु अबवाहु, और उसके वारिस उसके पास वालदेन है, फली उम्मीह सुरुस, तो उसकी माँ थर्ड, 1/3 लेगी। माँ को पहले कितना माँ को मिल रहा था जिस वक्त मरने वाले के बच्चे थे, 1/6, अब माँ को कितना मिल रहा है अगर मरने वाले के बच्चे नहीं है, 1/3। और बाप को फिर कितना मिलेगा, बाप का सवाल होगा, बाप का तो यहाँ पे बताया ही नहीं। तो बाप को अब जो रिमेनिंग होगा वो बाप को मिल जाएगा सारा का सारा, वो असबा बनेगा। जिन्होंने विरासत का लिया है कोर्स, उनको ये बात आराम से समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं लिया वो ये समझ लें कि 1/3 माँ को तो 2/3 बाप को मिल जाएगा। फइन काना लहू इख्वातुन, और अगर उसके बहन भाई भी हैं, मरने वाले की बात हो रही है, मैयत की कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, मरने वाले के अगर बहन भाई हैं, फली उम्मी सुदुस, तो अब भी माँ को सुदुस ही मिलेगा। पहले मरने वाले की औलाद नहीं थी तब भी, सॉरी औलाद थी तब भी माँ को सुदस मिला था 1/6, और अब भी जब मरने वाले के बहन भाई हैं तो तब भी माँ को सुदस मिलेगा, और फिर बाकी बाप को भी मिलना है और बहन भाइयों को भी मिलेगा। मिम बादी वसीयत यूसी बिहा औदैन, इसके बाद के वसीयत पूरी कर ली जाए और कर्ज अदा कर दिया। ये वाली बात थी जो मैं आपको पहले बता रही थी कि जब कोई मरता है तो उसके बाद सबसे पहले उसके माल में से एतदाल के साथ तजहीज व तकफीन का खर्चा निकाला जाएगा। ये नहीं कि हमें जी फलां जगह पे कब्र चाहिए, वो जो इतनी महंगी है वो हम लेंगे, और इसके बाद गाड़ी भी, वो जो जनाजा लेके जाएगी वो भी फलां गाड़ी होनी चाहिए, और इतना महंगा हर चीज में किया जाए, नहीं, एतदाल के साथ उसके माल में से सबसे पहले उसका कफन दफन का इंतजाम किया जाए। ये मरने वाले के माल में से होना चाहिए, अनलेस कोई सदका करना चाहिए, इसके ऊपर तो अलग बात है। बाज लोग अपनी जिंदगी में भी अपनी कब्र लेके रख लेते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, अपना कफन लेके रख लेते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो अपने उसके माल में से मरने वाले के पहले, सबसे पहले, किसी को नहीं अभी कुछ देना, सबसे पहले उसका हक तो है ना, वो जा रहा है दुनिया से, तो वो कम अज कम इसके जो तजहीद तकफीन जो है वो तो उससे हो ना, तो वो करी जाएगी। उसके बाद नंबर 2, अगर देखा जाएगा उसके ऊपर कोई कर्जा है तो उसका कर्ज अदा किया जाए, जिस पूछ लिया जाए किसी का कर्जा इसने देना है, थोड़ा या ज्यादा है, वो उसका कर्ज अदा किया जाए, क्योंकि इंसान अपनी कर्ज के साथ मुअल्लक रहती है, उसकी रूह, इंसान के लिए उसका कर्ज अदा करना जरूरी है, तो उसका कर्ज इस उसके पैसों में से अदा कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर कर्ज में फिर अगर मेहर नहीं उसने अदा किया हुआ तो मेहर अदा किया जाए। अच्छा जी, अब थर्ड थिंग कि उसने फिर जो वसीयत की है, अब वसीयत 1/3 से ज्यादा की नहीं वसीयत कर सकते, कोई भी मरने वाला अपनी जिंदगी में, मैं अगर लिख के जा रही हूं अपनी वसीयत तो मैं कहूंगी मैं अपनी पूरी जितना मेरा एसेट है उसमें से सिर्फ मैं 1/3 को कह सकती हूँ, फलां जगह दे देना, फलां चैरिटी को दे देना, अस्पताल को दे देना, मदरसे को दे देना, इसको दे देना, उसको करना, वो मैं 1/3 कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती जब मैं मर जाऊं मेरी सारी जायदाद बस फलानी को वक्फ कर दी जाए, वो वक्फ करनी, आपने अपनी जिंदगी में जो भी करना है करें अपनी चीजों का, लेकिन आप मरने के लिए अपनी वसीयत में नहीं ये लिख के जा सकते कि मैंने बस सारा वक्फ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वो अल्लाह के रास्ते में देना पूरी जिंदगी नहीं ख्याल आया, अब जिस वक्त वारसों की बनने लगी है तो अब आपको अल्लाह के रास्ते में याद आया, तो ये नहीं करना, ठीक है। और नंबर 2, वसीयत जो है वारसों के हक में नहीं की जा सकती, जिनका यहाँ पे हिस्सा बताया जा रहा है ना, जितने वारिस होंगे जिनको हिस्सा मिलना है उनके हक में नहीं की जा सकती, वारसों के अलावा की जा सकती है। मसलन किसी की खाला है, कोई किसी की, मैंने बताया ना, भांजे भतीजो, इनका विरासत में हिस्सा नहीं होता, अक्सर नहीं इनको मिलेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं मिल रहा उनके हक में तो वसीयत की जा सकती, जिनको मिल रहे हैं, अब वो मिल रहा है बेटे को, एक को मिल रहा है, लेकिन और मेरा दिल चाहता है इसने खिदमत बहुत की तो इसको दो, नहीं ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो वसीयत, वसीयत यूसी भी है, औदेन जो उसके वसीयत जो पूरी करनी है, या कर्ज, ये इजमाए उम्मत है, तमाम उलमा का इस पे इजमा है कि पहले तजहीदो तकफीन होगी, फिर कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी, और फिर उसके बाद विरासत बांटी जाएगी, फिर विरासत का हिस्सा आता है, ठीक है। अच्छा, आबा हुकुम व अबना हुकुम ला तदरुना अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा। अब इंसान कहता है मेरे तो बच्चों को ज्यादा जरूरत है, मेरे माँ बाप ने क्या करना है, उनका बुढ़ापा है, उनको क्या इस वक्त जरूरत है, लो असल तो मेरे बच्चे तो वो ज्यादा, उनकी इस वक्त काम, इतने जिंदगी के पढ़ाइयाँ शादियां उनकी सब होनी है, तो माँ बाप को क्या चाहिए, उनको क्यों मिलना चाहिए, उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, और अक्सर नहीं देते, आपने देखा है कोई चीज भी नहीं पूरी करते, मतलब अक्सर नहीं देते का मतलब क्या, यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं कि किसका हिस्सा भी है किसी का, तो बताया गया तुम्हें क्या पता, ला तदरुना अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा, तुम्हें क्या पता किसको देना तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो, तुम्हारे लिए फायदामंद साबित हो, इसलिए ये ना कहो इनको क्या जरूरत है, उनको क्यों दे, बल्कि अल्लाह ने जो कानून रखा है ना, जो मुकर्रर किया हिस्सा, उसमें कोई हिकमत है, फरीदा तमिन अल्लाह, ये फरीजा है अदा करना अल्लाह की तरफ से, और देख लें आज कितने फरीजे टूट रहे हैं, ये कोई इंसानों के बनाए हुए को हमारे ऊपर फर्ज नहीं किए गए, हर वालदेन, हर जाने वाला ये सोचता है कि मैं नहीं अगर हिस्से करके जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या हमारा ये काम है कि हम ये बस कहें कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में हिस्से बता दिए उसी के मुताबिक मेरी विरासत बांटी जाए, ताकि इंसान के खुद के ऊपर तो ना हो कोई ब्लेम अल्लाह के हाँ, और खुद इसके अंदर इंटरफेरेंस की कोशिश ना की जाए, ये फेवरेटिज्म किसको देना है किसको नहीं देना, इसने मुझे नाराज किया, इसने मुझे राजी किया, इसने खिदमत की, इसमें नहीं खिदमत की, उनको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, खुद ये नहीं हम फैसला कर सकते, हाँ उनको दे दिया, अब उसके बाद वो जिसको मर्जी दे, उनकी मर्जी है, वो सदका खैरात करें, किसी पे खर्च करें, हम ये हमारा नहीं काम। इन अल्लाह कहना अलीमन हकीमा, क्यों कह दिया गया यहाँ पे अलीम और हकीम की क्यों आई सिफात, कि तुम समझ लो तुम्हें अकल नहीं, उस तरह अल्लाह को इल्म है, अल्लाह के पास हिकमत है, उसने अपने इल्म और हिकमत के जरिए ये अहकामात दिए हैं, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम इनको बदल दो या इनको तोड़ो या खुद सोचो कि मैं इससे बेहतर फैसला ला सकती हूँ, ये अल्लाह ने हिस्से रख दिए हैं। तो ये थी आज की आयात, और उम्मीद है इनकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं कोई बात समझ आई तो आप इस टेबल को देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें से समझ आ जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما